ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्यारे शैवम.आर की श्रोताओं, अगला कार्यक्रम बच्चों की कहानी का समय है। इसमें आप तिरुविळैयाडल पुराण की छठा भाग को सुनने वाले हैं। इस कार्यक्रम को पेश करते हैं श्रीमती शांता सुंदरराजन जी। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।
नमस्ते बच्चों, आज आप दिव्य दंपति के विवाह के बारे में सुनने के लिए आए हैं ना? अरे उषा, तुम तो सच डच कर आई हो, शादी के लिए ऐसे ही आना चाहिए।
नमस्ते दीदी, कैलाश में तो शिवजी वर के रूप में तैयार होकर मदुरै की ओर निकल पड़े हैं। पिछली कड़ी में हमने सुन लिया कि हजारों में बाराती आ रहे हैं। क्या मदुरै महानगर में इनके आगमन के लिए उचित तैयारियां हो रही है?
बच्चों, परंजोते अडिगर तिरुविळैयाडल पुराणम में बड़े ही विस्तार से इस विवाह का विवरण दिया है। महामंत्री सुमति के साथ तटातगय मदुरै राजधानी लौटी। महारानी तटातगय और सुंदरेश्वर के विवाह का समाचार फैलते ही पूरे शहर में और राज्य में उत्सव और समारोह का वातावरण छा गया। लोगों के दिल में उल्लास भर गया। हर नागरिक को ऐसा लग रहा था कि घर में शादी ही अपने ही घर में शादी हो रही हो। मदुरै नगर देवलोक जैसे सजाया गया। राजपथ, बड़े रास्ते, यहाँ तक कि गलियों को भी सुगंधित जल से साफ किया गया था। जगह जगह फूलों की तोरण लगाए गए। हर घर का आंगन रंगोलियों से सजाया गया था। राज्य सरकार की ओर से बहुत सारे दान किए गए। 15 दिन तो किसी के घर में चूल्हा ही नहीं जला। राज्य की तरफ से ही सबको तरह तरह की खाना और पकवान खिलाया गया। लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर बधाई दे रहे थे। मंगल वाद्यों की मधुर ध्वनि दिन रात गूंजने रही थी।
शगर की ही ऐसी स्थिति तो राज महल का क्या कहना। राज माता कांचनमाला तो पहले इस शुभ समाचार का विश्वास भी नहीं कर पाई। महामंत्री सुमति के आश्वासन के पश्चात ही वह शादी की तैयारियां करने लगी। स्वयं शिवजी की अपने जामाद हैं। इस भाग्य के लिए बार बार शिवजी को नमन कर रही थी। तुरंत राजमहल भी सज धज गया। देवलोक से सभी देवगण बाराती बनकर आने वाले थे। उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ी थी। मल्यध्वज की अनुपस्थिति में स्वयं ब्रह्मा और विष्णु लड़की वाले बनकर शिवजी के स्वागत के लिए राजमहल के द्वार पर खड़े हुए। वे भी उत्सुकता से वे वर की प्रतीक्षा करने लगे।
अंतपुर में तो बहुत ही खलबली मच गई थी। वधु विवाह के लिए तैयार जो हो रही थी ना, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी के नेतृत्व में तटातगय का अलंकार का सिलसिला आरंभ हुआ। नंदिनी और कमलिनी नाम के दो अप्सरस देवियां तटातगय की व्यक्तिगत सेवा के लिए नियुक्त की गई थी। मंगल स्नान के पश्चात देवी जगत जननी ने कटी वस्त्र के ऊपर हीरों का मेखला पहना, तरह तरह के स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत हुई। कोमल हाथों में सोने के कंकन चमक रहे थे। कमल जैसे पैरों में पायल और नूपुर सुमधुर बजती थी।
मुखमंडल तो पूर्ण चंद्रमा की तरह करुणा की शीतलता से आच्छादित थी। देखने वाले तो देखते ही रह गए। तटातगय को सुंदरता का ही लक्षण बन गई थी। आदि शंकराचार्य के मीनाक्षी पंचरत्नम श्लोक में बड़े सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया गया है। दीदी सुनाइए ना।
मुक्ताहार लसत् किरीट रुचिराम पूर्णेन्दु वक्त्र प्रभाम सिंचन्नूपुर किंकिणी मणिधराम पद्म प्रभा भासुराम सर्वाभीष्ट अलंकृताम गिरिसुताम वाणी रमा सेविताम मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि संततमहं कारुण्यवारानिधिम्।
आगे सुनिए बच्चों, वाणी और रमा के हाथों को अपने मृद हाथों में लिए देवी मीनाक्षी लग्न मंडप की ओर चलने लगी। पुष्प वृष्टि हुई और मंगल वाद्य बजने लगे। राजद्वार पर बाराती आई, बीचों बीच नंदी पर सवार सुंदरेश्वर वर के रूप में पधारे। ब्रह्मा और विष्णु ने उनका सादर स्वागत किए। राजमाता कांचनमाला महादेव की चरणों को दूर से अभिषेक किया। देवी तटात गई, हाथों में वरमाला लिए आई। महादेव और आदि पराशक्ति दोनों आंखों से आंख मिले, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया।
पराशक्ति मन ही मन कहने लगी, हे सर्वेश्वर, आप इस सारे विश्व के आधार हो। आकाश, नक्षत्र मंडल, सप्त समुद्र और ये दशों दिशाएं आप ही हैं। पीठम यस्य धरित्री जलधर कलशम लिंगम आकाशमूर्तिम नक्षत्रम पुष्पमाल्यम ग्रहगण कुसुमम चंद्रवग्नक नेत्रम कुक्षिहि सप्त समुद्रम हिमगिरि शयनम सप्त पादाल पादम वेदम वक्त्रम षडंगम दश दिशि वदनम दिव्यलिंगम नमामि।
उत्तर में शंभु ने देवी पराशक्ति से मौन शब्द में कहने लगे, हे आद्य शक्ति, हे मीनाक्षी, आप श्री विद्या हो, मेरे वाम भाग की अधिकारी हो, हिंकार मंत्र के स्वरूप हो, श्री चक्र निवासी हो, अखिलांड नायकी हो।
श्री विद्याम शिव वाम भाग निलयाम हिंकार मंत्रोज्वलाम श्री चक्रांकित बिंदु मध्यवसती श्रीमत् सभा नायकी।
तुम ज्ञान प्रदा हो, नाद ब्रह्ममयी हो, आओ हम आपको स्वीकारते हैं।
वर और वधु ने एक दूसरे को वरमाला पहनाने के बाद पाणि ग्रहण हुआ। आकाश में जय जयकार के बीच देवी तटादगई का मंगल सूत्र धारण हुआ। उनकी माथे में सिंदूर भर दिए गए। ब्रह्मा जी के वेद मंत्र उच्चारण के साथ अग्नि के साथ फेरे लिए। महाविष्णु जो वास्तव में पराशक्ति का ही भाई है, देवी मीनाक्षी के हाथों में लाज या मुरमुरे रखकर लाज होमम भी करवाया। विवाह संबंधित अन्य विधियां भी पूरी हुई।
इस तरह मीनाक्षी परिणय सुसंपन्न हुआ। लग्न मंडप में शिव और शक्ति स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए। राजमाता कांचन माला अपने जामाद के सम्मुख आई और कहने लगी, हे सर्वेश्वर, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपने वचन दिया है कि आप मदुरई में ही सोम सुंदर पांडियन के नाम से राज्यभार संभालेंगे, इसलिए इसी मुहूर्त में आपका राज्याभिषेक भी होगा। तटातटे आपकी पटरानी बनकर आपके हर कार्य में साथ देगी। शिव जी ने उसे स्वीकार किया और उनका राज्याभिषेक हुआ। इस प्रकार पांड्य राज्य भूलोक में एक ऐसा भाग्यशील राज्य बन गया जिसका राजा स्वयं भगवान महादेव ही थे।
विवाह के पश्चात जब भोजन का समय आया तो शिवजी की लीलाओं की भी शुरुआत होगी। पतंजलि मुनि और व्याघ्रपाद ने शिवजी से आग्रह किया कि चिदंबरम में तो हर दिन आपका दिव्य नृत्य को देखने के बाद ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, आज भी हम वही करना चाहते हैं। इससे मदुरई वासियों को भी आपका तांडव नृत्य देखने का सौभाग्य मिलेगा। शंभु भी यही चाहते थे। तुरंत वहाँ एक रजतमय सभा मंडप प्रकट हुआ और शिव जी का तांडव नृत्य आरंभ हुआ। बच्चों, चिदंबरम में स्वर्ण सभा मंडप है जिसे तमिल में पोन्नम्बलम कहते हैं। अब मदुरई सभा वेल्ली अम्बलम नाम से जाना जाता है।
अब जो दो लीलाएं सुनाने वाले हैं, वे आप लोगों के लिए मन पसंद घटना होगी। राजमाता और तटातगई ने सभी बारातियों के लिए भरपूर अन्न पकवान आदि संयोजन कर रखी थी। उनके मन में थोड़ा सा गर्व झलक भी दिया। वे सोचने लगे कि देवगणों को भी हम ही अन्न देते आ रहे हैं। शिव जी मुस्कुराते हुए सोचे कि यह गर्व ठीक नहीं है।
भोजन के पश्चात दोपहर में सभी विश्राम कर रहे थे और विवाह के बारे में बातचीत हो रही थी। देवी तटाट गई भी कहने लगी कि हे ईश्वर, सभी आमंत्रित अतिथि गण भोजन आदि की प्रशंसा कर रहे थे। हर एक को पेट भर खाना मिला है और कहते कहते रुक गए। रसोई भंडार से कर्मचारी आए और कहने लगे कि देवी, न जाने क्यों अन्न व्यंजन और पकवान बहुत बच गए हैं। यही नहीं, उसकी मात्रा भी अधिक से अधिक होते ही जा रहा है। समझ में नहीं आता ऐसे क्यों हो रहा है, इस समस्या का हल कैसे निकाले।
मीनाक्षी देवी ने शिव जी की ओर देखा और कहने लगी, हे भगवान, क्या आपके शिवगण संख्या में इतने कम हैं? हमने तो पर्याप्त भोजन बना के रखा है। शिव जी बोले, देवी, आप लोग मेरे सभी गणों को पेट भर परोस नहीं सकते। लेकिन देवी नहीं मानी, उसने चुनौती स्वीकार कर ली। शिव की लीला से गुंडोदर नाम का एक शिव गण आया और बोला, मुझे बड़ी भूख लगी है। कर्मचारी उसे अन्न कक्ष में ले गए और खाना परोसा। भंडार खाली हो गया, लेकिन गुंडोदर का भूख नहीं मिटी। वह सभी तरकारियां, फल और अन्य सामग्रियों को बिना पके हुए खाने लगा और भोजन के लिए हाहाकार करने लगा। तटातगई ने हार मान ली।
सोम सुंदर देवी अन्नपूर्णा को बुलाकर स्थिति को सुधारा। अन्नपूर्णा ने चार गड्ढे खोदे और उन सब में दही का अन्न भर दिए और गुंडोदर को खाने को कहा। गुंडोदर का पेट तो भर गया, लेकिन उसे अब बड़ी प्यास लगी। मदुरई नगर के सभी तालाबों का पानी पी लिया, परंतु उसकी प्यास न बुझी। तटादगई तो और भी संकट में पड़ गई। उन्हें पता चल गया कि वह शिवजी की ही लीला है। मन ही मन अपने शिवजी की उसने क्षमा प्रार्थना की।
शिवजी प्रसन्न होकर गंगा को बुलाया और उन्होंने कहा, हे गंगे, तुम्हारा पावन जल इस क्षेत्र में भी बहना चाहिए। चोल देश की एक कावेरी नदी तमिलनाडु के लिए पर्याप्त नहीं है, पांड्य देश के लिए भी एक नदी की आवश्यकता है। जहाँ गुंडोदर हाथ रखेगा, वहीं से तुम्हारा बहना आरंभ हो। फिर उन्होंने गुंडोदर से कहा, हाथ रखो और प्यास बुझा लो। गुंडोदर जहाँ पर अपने हाथ रखा, जल की धारा बहने लगी और उसका भूख और प्यास मिट गए।
तमिल में वैगई का अर्थ है हाथ रखो। उस दिन से गंगा जी वैगई या वेगवती के नाम से मदुरई और आसपास के शहरों को हरियाली करती आ रही है। इस तरह एक और शिवलीला संपन्न हुई।
शिव जी जैसे ही सुंदर पांड्य के नाम से राजा बने, लोगों के लिए एक उत्तम उदाहरण बन गए। महामंत्री सुमति के निर्देश के अनुसार ही राज्य करने लगे। मंदिर जाकर भगवान शिव की आराधना भी की। देवी मीनाक्षी पतिव्रता धर्म निभाने में कोई कमी नहीं दिखाई। बच्चों, शिव जी की अगले लीला सुनने के लिए आपको अभी प्रतीक्षा करना होगा। नमस्ते।